नमस्कार भारत, तारीख 8 नवंबर, दिन गुरुवार। मैं हूं मोहम्मद शाहिद। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने देश के महाधिवक्ता को पद से हटाया। नोटबंदी को आज हो रहे 2 साल पूरे, लेकिन क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उद्देश्य पूरा हो पाया?
ये सरकार को एक मैसेज देना था कि ये सिर्फ बनियाओं की, छोटे ट्रेडरों की, ट्रेडर्स की, व्यापारियों की सरकार नहीं है, ये आम जनता की, गरीब जनता की सरकार है।
सुनेंगे उन लोगों को जिन पर है इंटरनेट के जरिए फेक न्यूज फैलाने का आरोप।
मैं तो ये कह रहा हूँ, आप साबित तो कर दो भैया, फेक कैसे है?
ये फेक नहीं है,
बिल्कुल फेक नहीं है, आप साबित करिए फेक है। क्या वहाँ से ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी हुआ?
होंगी और भी खबरें, लेकिन पहले सुनते हैं विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, दिलनवाज पाशा से। अमेरिका के महाधिवक्ता जेफ सेशंस ने राष्ट्रपति ट्रंप के कहने पर अपना पद छोड़ दिया है। जेफ सेशंस ने बीते साल 2016 के राष्ट्रपति चुनावों में रूस के कथित दखल को लेकर चल रही रॉबर्ट म्यूलर की जांच से अपने आप को अलग कर लिया था। वो तब से ही राष्ट्रपति ट्रंप के निशाने पर थे। सीनेट में डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता चक शूमर का कहना है कि जेफ सेशंस को हटाए जाने का समय शक पैदा करता है। उन्होंने कहा कि यदि राष्ट्रपति जांच में अड़ंगा लगाते हैं तो इससे संवैधानिक संकट पैदा हो जाएगा। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो अमरीकी संसद के नए निर्वाचित निचले सदन यानी कांग्रेस में डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं। कल हुए चुनावों में कांग्रेस में डेमोक्रेट पार्टी ने बहुमत हासिल किया है। हालांकि ट्रंप ने यह भी कहा कि यदि उनके टैक्स मामलों की जांच शुरू की गई तो वो भी डेमोक्रेट पार्टी की जांच करवाएंगे। वहीं एक प्रेस वार्ता में ट्रंप ने कहा कि बेहद कड़े मुकाबले वाले चुनावों में असली जीत उनकी पार्टी की ही हुई है। ट्रंप ने अपनी रिपब्लिकन पार्टी के उन नेताओं का मजाक भी बनाया जिन्होंने चुनाव अभियान में उनसे दूरी बनाने की कोशिश की थी। लंबी चली एक प्रेस वार्ता में ट्रंप ने कहा,
Now we can investigate.
हमें साथ मिलकर काम करना चाहिए, अब हम भी जांच कर सकते हैं, वो हमें देखें, हम उन्हें देखें। ये तो 2 साल से हो रहा है और इन 2 सालों के बाद इससे कुछ हासिल नहीं हुआ है, लेकिन अब उनके लिए बुरा ये है कि बहुमत उनके पास है। मैं अब जिम्मेदारी उन पर ही डालूंगा, आप समझ ही रहे होंगे, मैं अब जिम्मेदारी उन पर ही डालूंगा क्योंकि बहुमत उनके पास है। ईमानदारी से कहूं तो इससे मेरे लिए चीजें बहुत आसान हो गई हैं। ये थे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शब्द। वहीं एक प्रेस वार्ता में डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता नैंसी पेलोसी ने कहा है कि ट्रंप के कामकाज पर नजर रखना उनकी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा, अमेरिका के लोग वाशिंगटन में रिपब्लिकन पार्टी के एक शत्रु अधिकार को खत्म करना चाहते थे और उन्होंने हमारे देश के निर्माताओं के बनाए नियंत्रण और संतुलन को फिर से लागू कर दिया है। जब हम अपने संविधान की रक्षा करने की शपथ लेते हैं तो यही जिम्मेदारी उठाते हैं। कैमरून में अगवा किए गए 78 स्कूली बच्चों में से कुछ को उत्तर पश्चिमी बामेंडा शहर में उनके अभिभावकों से मिलवाया गया है। अपहरण के 2 दिन बाद इन छात्रों को एक चर्च के पास छोड़ दिया गया था। रिहा किए गए एक छात्र ने बीबीसी से कहा है कि उन्हें लड़ाकों ने अगवा किया था। रिहा किए गए अपने बच्चे से मिलने के बाद एक माँ ने कहा,
You can imagine the stress that we have gone through for these past 2 days. It has been horrible. We have spent.
हम बीते 2 दिनों में जिस तनाव से गुजरे हैं आप उसे समझ सकते हैं, ये बहुत भयावह था। हम रातों को सो नहीं पाए। हम उनके सुरक्षित लौटने पर भगवान का शुक्र अदा करते हैं। हम स्कूल गए और उन्हें देखा, उन सभी को देखा, वो ठीक हैं। पाकिस्तान में ईशनिंदा के आरोपों से हाल ही में बरी हुई ईसाई महिला आसिया बीबी और उनके परिवार ने रावलपिंडी के एयरबेस से उड़ान भरी है। आसिया बीबी के वकील सैफुल मलूक के मुताबिक उन्होंने मुल्तान जेल से रिहा कर दिया गया है। हालांकि अब ये साफ नहीं है कि उन्होंने देश छोड़ा है या नहीं। आसिया बीबी को ईशनिंदा के आरोप में मौत की सजा सुनाई गई थी और वो 8 साल से जेल में कैद थीं। यमन में हुती विद्रोहियों के नेता ने कहा है कि वो किसी भी हालत में सऊदी के नेतृत्व वाले गठबंधन के सामने आत्मसमर्पण नहीं करेंगे। उन्होंने अपने समर्थकों से विद्रोहियों के नियंत्रण वाले हुदैदा शहर पर सरकार समर्थक बलों के हमलों को नाकाम करने का आह्वान भी किया। बीबीसी समाचार।
ये बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत है। इसका सीधा प्रसारण आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और मोबाइल ऐप पर भी सुन रहे हैं और मैं हूं मोहम्मद शाहिद। अमेरिका के नंबर एक कानूनी अधिकारी महाधिवक्ता जेफ सेशंस ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर अपना पद छोड़ दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों में कथित रूसी दखल की जांच से जेफ सेशंस ने खुद को अलग कर लिया था। अब उनके हटाए जाने के बाद एफबीआई के पूर्व निदेशक रॉबर्ट म्यूलर की निगरानी में चल रही जांच के भविष्य पर भी सवाल उठ रहे हैं। बीबीसी संवाददाताओं का भेजा ब्यौरा सुनिए दिलनवाज पाशा से।
अमेरिका के महाधिवक्ता जेफ सेशंस ने राष्ट्रपति ट्रंप के कहने पर अपना पद छोड़ दिया है। सेशंस की जगह अब ट्रंप के करीबी मैथ्यू विटाकर अस्थायी तौर पर महाधिवक्ता की जिम्मेदारी संभालेंगे। मध्यावधि चुनावों के ठीक एक दिन बाद हुए इस घटनाक्रम ने सभी को चौंका दिया है। अमेरिका के नंबर एक कानूनी अधिकारी जेफ सेशंस ने बीते साल अपने आप को 2016 राष्ट्रपति चुनावों में रूस के कथित दखल की जांच से अलग कर लिया था। विशेष अधिवक्ता रॉबर्ट म्यूलर ट्रंप की जीत में रूस के कथित सहयोग की जांच कर रहे हैं। इस जांच के दायरे में ट्रंप प्रशासन के कई शीर्ष अधिकारी हैं। जेफ सेशंस के इस जांच से हटने से ट्रंप काफी नाराज थे और कई बार सार्वजनिक रूप से उन पर गुस्सा भी उतार चुके थे। माना जा रहा है कि ट्रंप ने इसी वजह से जेफ सेशंस को पद से हटाया है। इसी साल मार्च में जॉर्जटाउन लॉ स्कूल के एक कार्यक्रम में जब जेफ सेशंस से पूछा गया था कि क्या उन्होंने रूस के कथित दखल की जांच से खुद को हटाकर कोई गलती की है, तो उन्होंने कहा था, नहीं, मुझे लगता है मुझे यही करना चाहिए था। मैंने एहसास नहीं किया, मैं जानता था। हमें ऐसे सवालों का सामना करना होता है और मैंने नियुक्ति की पुष्टि करने वाली समिति से भी कहा था कि मामले से हटने के बारे में मैं विभाग के शीर्ष अधिकारियों से सलाह लूंगा। जुलाई 2017 में ट्रंप ने न्यूयॉर्क टाइम्स से कहा था कि सेशंस को जांच से अलग नहीं होना चाहिए था और अगर वो ऐसा करना चाहते थे तो मुझे पहले बताना चाहिए था, मैं उनकी जगह किसी और को नियुक्त कर देता। वहीं जेफ सेशंस को हटाए जाने के समय पर शक जाहिर करते हुए सीनेट में डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता चक शूमर ने कहा है कि इससे रॉबर्ट म्यूलर की जांच भी प्रभावित हो सकती है। उन्होंने कहा, मैं यही कहूंगा कि म्यूलर और उनकी जांच को बचाना सबसे अहम है। अगर म्यूलर की जांच को खत्म करने या उसे सीमित करने के प्रयास किए जाते हैं तो इससे संवैधानिक संकट पैदा हो जाएगा और मुझे उम्मीद है कि ट्रंप और उनके सलाहकार ऐसा करने से बचेंगे। वहीं जेफ सेशंस को हटाए जाने के बाद अब सवाल उठ रहा है कि क्या ट्रंप म्यूलर को भी हटा देंगे। जो भी हो, संकेत साफ है कि एफबीआई के पूर्व निदेशक रह चुके रॉबर्ट म्यूलर के पास जांच पूरी करने के लिए अब बहुत ज्यादा समय नहीं होगा और अगर वो राष्ट्रपति ट्रंप को घेरने के लिए अपनी जांच का दायरा बढ़ाते हैं तो कार्यकारी महाधिवक्ता मैथ्यू विटाकर उनके राह का रोड़ा बन सकते हैं।
अमरीकी राष्ट्रपति ने महाधिवक्ता सेशंस को हटाया। ब्यौरा दे रहे थे दिलवास पाशा।
नमस्कार भारत, शॉर्ट वेव 49, 41 और 25 मीटर बैंड यानी 5875, 7430, 11995 किलोहर्ट्ज़ और मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज़ पर।
आते हैं भारत और एक ऐतिहासिक घटना पर। नोटबंदी को आज 2 साल पूरे हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर 2016 को रात 8 बजे अचानक 500 और 1000 रुपए के नोट बंद करने की घोषणा की थी। इसका मकसद कालेधन का सफाया, चरमपंथियों को होने वाली फंडिंग पर रोक लगाना, नकली नोटों को सिस्टम से बाहर करना और भ्रष्टाचार पर काबू करना बताया गया था। लेकिन क्या सही में नोटबंदी का यही मकसद था और क्या सरकार का उद्देश्य पूरा हो पाया है? सुनिए हमारे संवाददाता जुबैर अहमद की ये रिपोर्ट।
प्रधानमंत्री ने नोटबंदी की घोषणा करते समय 50 दिनों की मोहलत मांगी थी। उन्होंने अपने भाषण में कहा था, भाइयों बहनों, मैंने सिर्फ देश से 50 दिन मांगे हैं, 50 दिन। 30 दिसंबर तक मुझे मौका दीजिए मेरे भाइयों बहनों। अगर 30 दिसंबर के बाद कोई कमी रह जाए, मेरा गलत इरादा निकल जाए, आप जिस चौराहे पर मुझे खड़ा करेंगे, मैं खड़ा होकर देश जो सजा करेगा वो सजा भुगतने को तैयार हूँ। देश को एक बड़ा झटका देने वाले अपने इस कदम का उद्देश्य बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा था कि ये काले धन के खिलाफ एक मुहिम है। उन्होंने इसे चरमपंथ और आतंकवाद की फंडिंग के खिलाफ एक सर्जिकल स्ट्राइक कहा था। उन्होंने इसे एक कैशलेस अर्थव्यवस्था और डिजिटल समाज की तरफ एक बड़ा कदम बताया था। दो साल बाद मोदी सरकार का दावा है कि उन्होंने सारे उद्देश्य पूरे कर लिए। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने पिछले साल कहा था 500 और 1000 रुपए को सिस्टम से हटाने के बाद अर्थव्यवस्था में एक औपचारिकता आई है, टैक्स नेट बढ़ा है और विकास दर में वृद्धि हुई है। लेकिन इकोनॉमिक टाइम्स अखबार के संपादक टी के अरुण के अनुसार आर्थिक रूप से नोटबंदी नाकाम रही, मगर सियासी एतबार से ये एक बड़ी कामयाबी थी।
एक तरह से बिल्कुल बड़ा सक्सेस था पॉलिटिकली। ये सरकार को एक मैसेज देना था कि ये सिर्फ बनियाओं की, छोटे ट्रेडरों की, ट्रेडर्स की, व्यापारियों की सरकार नहीं है, ये आम जनता की, गरीब जनता की सरकार है।
ये मैसेज, ये पैगाम देना था इनको।
हाँ, इसमें ये नोटबंदी काफी सफल हुआ।
पिछले साल RBI ने ऐलान किया था कि 99% से अधिक नोट सिस्टम में वापस आ गए हैं। केंद्रीय बैंक के मुताबिक नोटबंदी के समय देश भर में 500 और 1000 रुपए के कुल 15,41,000 करोड़ रुपए के नोट चलन में थे। इनमें से 15,31,000 करोड़ के नोट अब सिस्टम में वापस आ गए हैं, यानी यही कोई 10,000 करोड़ रुपए के नोट सिस्टम में वापस नहीं आ सके। इसका मतलब ये हुआ कि लोगों के पास कैश की शक्ल में काला धन नहीं के बराबर था। आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ प्रिय रंजन डैश कहते हैं कि ये सोचना मूर्खता है कि लोग काले धन को कैश की शक्ल में अपने घरों में रखते हैं। उनके अनुसार काले धन से कमाए गए कैश पैसे जमीन जायदाद इत्यादि में निवेश कर दिए जाते हैं। वो जोर देकर कहते हैं कि नोटबंदी नाकाम रही।
ये जो काम दो साल पहले हुआ, ये एक काला कारनामा था सरकार का, ये तुगलक की फरमान था और जिससे देश को, देश की अर्थव्यवस्था को भारी चोट पहुंचा। और जैसे कि सर्वविदित है, सब जानते हैं कि उसका इमीडिएट इम्पैक्ट जो लोगों की लाइन में रहने की, नौकरी खोने की, GDP में 2% की गिरावट हुआ, जो कि अपने आप में 3,00,000-3,50,000 करोड़ का घाटा कहा जा सकता है।
टीके अरुण के अनुसार ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मूर्खता नहीं बल्कि एक सियासी मास्टर स्ट्रोक था।
लोग समझते हैं कि लोग नाइव है, लोग बुद्धू है, तो जनता की नाइविटी को और उनका विश्वास को उसका फायदा उठा के सरकार ने यह चलाया है। उसका पॉलिटिकल फायदा उनको बिल्कुल हुआ और इकोनॉमी पे इसका काला असर अभी पूरा है।
पिछले दिनों जो मोदी सरकार ने RBI से 3.61 लाख करोड़ रुपए मांगे हैं, उसकी कड़ी प्रिय रंजन दास नोटबंदी के गलत फैसले से मिलाते हैं।
ये सरकार 3,60,000 करोड़ इसलिए मांग रहे थे क्योंकि वो सोच रहे थे कि ये नोटबंदी से वो कम से कम 3,00,000-3,50,000 करोड़ जो है ये ब्लैक मनी पकड़ी जाएगी। तो सरकार सोच रही थी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से वो 3,50,000 करोड़ ले लेगी एज डिविडेंड। अब वो हुआ नहीं, तो अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में से सरकार दूसरा तरीका निकाला है कि भाई बैंक की कैपिटलाइज करनी है तो आप उनकी शेयर, बैंक की शेयर खरीदो उस पैसे से।
लेकिन टीके अरुण कहते हैं कि नोटबंदी से इसका कोई संबंध नहीं है।
ये डिमोनेटाइजेशन के पहले ही हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर अरुण सुब्रमण्यन ने लिखा था अपने इकोनॉमिक सर्वे में कि भारत के रिजर्व बैंक के पास थोड़ा ज्यादा ही रिजर्व रखे हुए हैं दुनिया के बाकी बहुत सारे सेंट्रल बैंक के मुताबिक। ये पैसा उनके पास रहने की जरूरत नहीं है, सरकार को ट्रांसफर कर सकते हैं और सरकार उसको कुछ अच्छी चीज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं।
RBI को इस महीने की 20 तारीख तक ये फैसला लेना है कि वो सरकार को उसके मांगे गए पैसे मिलेंगे कि नहीं। विशेषज्ञ कहते हैं कि RBI के पास सरकार की मांग के सामने झुकने के अलावा और कोई रास्ता नहीं। जुबैर अहमद, BBC दिल्ली।
नोटबंदी की ऐतिहासिक घटना के बाद आते हैं देश में बड़ी मॉब लिंचिंग की घटनाओं पर। भारत में हालिया कुछ सालों में इस तरह के कई मामले सामने आए हैं जब लोगों को पीट पीट कर मार डाला गया। ऐसा कहा जाता रहा है कि ऐसे कई मामलों में फेक न्यूज़ की बड़ी भूमिका रही है। फेक न्यूज़ यानी किसी खास उद्देश्य से फैलाई गई गलत खबर। ऐसे कौन से लोग हैं जो ऐसे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पन्ने या वेबसाइट चलाते हैं जिन पर फेक न्यूज़ फैलाने के आरोप लगे हैं? सुनिए BBC संवाददाता विनीत खरे की ये विशेष रिपोर्ट।
आकाश सोनी खुद को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा बताते हैं। वो 12 लाख लाइक्स वाले BJP ऑल इंडिया के नाम का फेसबुक पन्ना चलाते हैं। इस पन्ने पर लगातार फेक न्यूज फैलाने का आरोप है। मसलन पन्ने पर केरल में कांग्रेस की रैली में पाकिस्तानी झंडा लहराने की खबर लगी, जबकि वो झंडा इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का था। ये वीडियो जिसमें झंडे को गलत तरीके से पेश किया गया दूसरी वेबसाइट्स पर भी पोस्ट हुआ था। आकाश सोनी कहते हैं,
कभी कभी हो जाती है मिस्टेक, खबर तो हमने हटा दी थी, जिस वेबसाइट ने वो खबर डाली थी उसका हटा दिया था।
इसी फेसबुक पन्ने पर एक दूसरी पोस्ट में जवाहरलाल नेहरू विदेशी महिलाओं के साथ नजर आते हैं। तकनीकी जालसाजी से बनाई गई कई साल पुरानी इस तस्वीर को ऑल इंडिया बीजेपी ने फोटोशॉप नहीं किया। आकाश सोनी,
ऐसी कोई फोटो अभी हमारे संज्ञान, हमें तो नहीं है संज्ञान।
आपके पेज पे
एक बंदा और है, वो हो सकता है उसने डाली हो।
कौन है ये बंदा?
हाँ, एक साथ में हमारे चलाते हैं, राजेंद्र जी हैं।
अच्छा,
हो सकता है, बट हमें याद नहीं है कि हमने ऐसी कोई पोस्ट डाली है।
आकाश सोनी फेक न्यूज फैलाने के सभी आरोपों से इनकार करते हैं। हमारी इस बातचीत के बाद हमें इस फेसबुक पन्ने का नाम बदला हुआ मिला। सैद्धांतिक विचारधारा और आर्थिक कारण आकाश सोनी जैसे लोगों को प्रेरणा देते हैं, लेकिन उनका कहना है कि वो किसी भी राजनीतिक दल से आदेश नहीं लेते। आकाश के मुताबिक उनका मकसद है ऐसी खबरों को लोगों तक पहुंचाना जिसे मीडिया अनदेखा कर देता है, साथ ही मीडिया की मदद से लोगों की भलाई करना। ग्वालियर शहर के केंद्र में है अंशिया प्लाजा, जिसकी तीसरी मंजिल पर है coveragetimes.com का दफ्तर। इस वेबसाइट पर फेक न्यूज फैलाने का आरोप है। रोहिंग्या समुदाय पर बीबीसी की एक रिपोर्ट में रोहिंग्या लड़की को चंद लम्हों के लिए दिखाया गया। रिपोर्ट में लड़की के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई थी, लेकिन coveragetimes.com पर लिखा गया इस लड़की के पति के 18 बच्चे हैं। क्या आप ऐसे शरणार्थी को भारत में बसाना चाहेंगे? ये एक फेक न्यूज थी। राजू सिकरवर coveragetimes.com के संपादक हैं।
जैसे आप मान लो इसको फेक मानते हो, तो
फेक मानते क्यों
नहीं है? चलो मान लो आप फेक है, तो लेकिन इसकी जो स्टोरी आई थी ना, जो जैसे मान लो बीबीसी वालों ने डाला है, किसी ने डाला है इसको,
उसके बारे में कहानी नहीं थी, एक पासिंग शॉट था। तो
रोहिंग्या का
आपने भी छापा उसको?
हाँ, मैंने भी छापा उस चीज को।
ये तो फेक न्यूज है ना?
हाँ, ये फेक न्यूज है।
तो इसके लिए क्या आपने आपने माफी मांगी कि भाई ये छप गया है या करेक्शन? ये तो आपने
नहीं, तो इस ये फेक न्यूज है।
राजू सिकरवर ने हमें बताया कि उन्हें ये जानकारी एक सूत्र से मिली थी, लेकिन सारी जानकारी सर्वर से डिलीट हो गई है। राजू के मुताबिक उनका मकसद है चरमपंथ और पड़ोसी बांग्लादेश से आप्रवासन जैसे मुद्दों को प्रकाश में लाना, जिन पर देश का मीडिया ध्यान नहीं देता। राजू कहते हैं, कभी कभी उनसे गलतियां हो जाती हैं, लेकिन किससे गलती नहीं होती। ग्वालियर के बाद अब हम पहुंचे हैं भोपाल शहर। यहां पर हम मिलने आए हैं अभिषेक मिश्रा से, जो वायरल इन इंडिया नाम की वेबसाइट चलाते हैं। इस वेबसाइट पर प्रो कांग्रेस और एंटी नरेंद्र मोदी मटेरियल पुश करने के अलावा फेक न्यूज फैलाने के भी आरोप लगे हैं। वेबसाइट की एक कहानी में एक कथित अमरीकी सर्वे के हवाले से मनमोहन सिंह को दुनिया का सबसे ईमानदार राजनीतिक नेता बताया गया। फैक्ट चेकर वेबसाइट ऑल्ट न्यूज ने इसे फेक बताया। अभिषेक मिश्रा वायरल इन इंडिया वेबसाइट के संपादक हैं।
मैं तो ये कह रहा हूँ ना, आप साबित तो कर दो भैया फेक कैसे है।
ये फेक नहीं है,
बिल्कुल फेक नहीं है, आप साबित करिए फेक है। क्या वहां से ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी हुआ? नहीं ना, बस साबित करो आप फेक है, बात खत्म हो गई।
ये सर्वे फिर कहां हुआ है? मतलब सर्वे
बिल्कुल वहां जिन्होंने ये बनाया है, जिन्होंने ऐसा कुछ पब्लिश किया, बिल्कुल उनकी जानकारी में बिल्कुल सच है ये खबर। और जो मुझे नहीं मालूम ये हमारी टीम में से किसी ने बनाया है, बट ये बिल्कुल सही है।
कुछ ही महीनों में आम चुनाव होने हैं और वर्चुअल दुनिया में पर्दे के पीछे कई अनजान चेहरे अपने अपने कारणों से अपनी पहुंच बढ़ाने की कोशिश में हैं। विनीत खरे, बीबीसी भोपाल।
अब वक्त है हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम दुनिया जहां का। ईरान पर अमेरिका की ओर से लगाए गए प्रतिबंध लागू हो गए हैं। ईरान की सरकार ने ऐलान किया है कि वो गर्व के साथ इन पाबंदियों को तोड़ेगी, लेकिन क्या ईरान के लिए ऐसा कर पाना मुमकिन है? मुश्किल वक्त में ईरान का समर्थन करने वाले देश क्या उसकी लगातार कमजोर होती अर्थव्यवस्था को बचा सकते हैं? और आर्थिक तंगी के बीच ईरान की सरकार कब तक अमरीकी दबाव से टकराने का हौसला दिखा सकती है? इस बार दुनिया जहां में वात्सल्य राय ने इन्हीं सभी सवालों की पड़ताल की है।
दुनिया जहां। तेहरान की सड़कों पर अमेरिका के खिलाफ नारेबाजी उस गुस्से का असर है जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन की ओर से लगाए गए प्रतिबंध से उपजा है। ईरान की सरकार भी अपनी नाराजगी छुपा नहीं रही है। राष्ट्रपति हसन रूहानी अमरीकी प्रतिबंधों को ठेंगा दिखाने का ऐलान कर रहे हैं।
इनके जमहूरी इस्लामी ईरान एमरोज मिथुने नफ्त खुदेश रो बेफरूशे,
ईरान तेल बेचता रहेगा, इस बार हम गर्व के साथ प्रतिबंधों को तोड़ेंगे।
बराक ओबामा के राष्ट्रपति रहते जुलाई 2015 में ईरान और पश्चिमी देशों के बीच परमाणु संधि हुई थी। करीब 6 महीने पहले ट्रंप ने इस समझौते से हटने का ऐलान किया था। अमेरिका ने ईरान से हटाए गए सभी प्रतिबंधों को दोबारा बहाल कर दिया है, कई नए प्रतिबंध भी लगाए गए हैं। दुनिया भर में परमाणु कार्यक्रमों पर नजर रखने वाली संस्था इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी IAEA के मुताबिक ईरान 2015 के समझौते का पालन कर रहा था। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार और अमेरिका की डेलावेयर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मुक्तदर खान कहते हैं कि ट्रंप प्रशासन ईरान की अर्थव्यवस्था की रीढ़ तोड़ना चाहता है।
अब जो हालत है, हो सकता कि ये दबाव बहुत ज्यादा पड़ेगा। इतने ज्यादा सख्त सैंक्शंस ईरान पे कभी लागू नहीं हुए थे, जो बेसिकली ईरान की इकोनॉमी को वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने की कोशिश है।
आंकड़े बताते हैं कि ईरान की मुद्रा रियाल लगातार गिर रही है, महंगाई बढ़ रही है और साथ में लोगों का गुस्सा भी भड़क रहा है। चीन, भारत और दक्षिण कोरिया समेत ईरान से तेल ले रहे 8 देशों को मिली आंशिक छूट के बीच ट्रंप ने कहा है कि वो ईरान से हो रहे तेल निर्यात को तुरंत रोक सकते हैं, लेकिन इससे बाजार सदमे में आ जाएगा, तेल की कीमतें तुरंत बढ़ जाएंगी। हालांकि चीन की राजधानी बीजिंग में मौजूद वरिष्ठ पत्रकार सैबल दास गुप्ता कहते हैं कि ट्रंप दावा भले ही कर रहे हो लेकिन वो दुनिया की कोई परवाह नहीं करते।
अमेरिका को पुराने चश्मे से नहीं देखना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप का जो पॉलिटिक्स है वो अमेरिका फर्स्ट, मतलब हमारे स्वार्थ में आज क्या है।
उधर मुक्तदर खान कहते हैं कि ट्रंप के शासनकाल में अमेरिका की छवि बदल गई है और ये जरूरी नहीं कि हर देश उनकी बताई राह पर ही चले।
ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का इंटरनेशनल अरीना में उतना रसूख नहीं रहा जितना पहले ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर था। अमेरिका से कई मुल्क नाराज हैं, तो हो सकता कि अमेरिका को वो कोऑपरेशन ना मिले जो पहले मिला था।
मध्य पूर्व की राजनीति पर नजर रखने वाले कई विश्लेषकों का दावा है कि अमेरिका ने जो प्रतिबंध ईरान पर लगाए हैं उनसे नुकसान उन देशों को भी हो रहा है जो ईरान के साथ व्यापार करते हैं। मध्य पूर्व मामलों के विशेषज्ञ कमर आगा कहते हैं कि ईरान से आने वाले तेल में कटौती होती है तो कीमतों में उछाल आता है और इससे भारत जैसे देशों की अर्थव्यवस्था पर सीधा असर होता है।
तेल की कमी होने से दाम बढ़ेंगे, ये भी तय बात है, ऑलरेडी बढ़ना शुरू हो गए। $1 बैरल पे बढ़ता है तो हमें $1 बिलियन का लॉस हो जाता है एक महीने में या एक महीने से थोड़े से ज्यादा वक्से में। और हमारा जो लक्ष्य है 8-10% इकोनॉमिक ग्रोथ का, वो सफर कर जाएगा।
बीते कुछ सालों में ईरान के साथ व्यापारिक संबंध बढ़ाने में जुटे चीन ने भी अमरीकी प्रतिबंधों पर खेद जताया है और कहा है कि उसे उम्मीद है कि ईरान के साथ उसका वैध कारोबार जारी रहेगा। विश्लेषकों की राय है कि भारत और चीन दोनों ही ईरान के साथ अपने व्यापारिक रिश्तों को तुरंत नहीं तोड़ सकते हैं। कमर आगा की राय है कि भारत के लिए चाबहार पोर्ट परियोजना रणनीतिक और व्यापारिक दोनों लिहाज से अहम है।
हमारे लिए तो ईरान बहुत स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट भी है और गेटवे है सेंट्रल एशिया का। चाबहार पोर्ट भारत जिसका निर्माण कर रहा है वो केवल 600 कुछ किलोमीटर दूर पे है गुजरात के कांडला पोर्ट से।
सैबल दास गुप्ता के मुताबिक चाबहार पोर्ट उन अहम कारणों में से एक है जिन्हें लेकर चीन ने ईरान के साथ रिश्तों को मजबूती देने की कोशिश की है।
उसको फिर काउंटर करने के लिए चीन ने ईरान के साथ दोस्ती की। चीन तो चाहती है कि पाकिस्तान को चाबहार पोर्ट में इंक्लूड कर दिया जाए, तो ये बड़े पैमाने में बड़े बड़े खेल हो रहे हैं और भारत भी कोई पीछे नहीं है इसमें।
सैबल दास गुप्ता ये दावा भी करते हैं कि अमरीका आर्थिक तौर पर चीन और ईरान दोनों को ही दबाना चाहता है, लेकिन वो ये भी नहीं चाहता कि चीन तेल खरीदने में ईरान की जगह रूस को चुने, इससे रूस बुलंद हो सकता है। लेकिन अमेरिका भारत, चीन और ईरान को आंशिक राहत देने से ज्यादा छूट नहीं देना चाहता। विश्लेषक ये दावा भी करते हैं कि शिया बहुल होने के नाते ईरान को स्वाभाविक तौर पर अमेरिका के करीबी होना चाहिए, लेकिन स्थिति इसके उलट है, खासकर 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद से। कमर आगा कहते हैं कि मध्य पूर्व में ईरान ने अलग राह चुनी हुई है जो ट्रंप को रास नहीं आती। वो इसराइल से लेकर सऊदी अरब तक अमेरिका के हर सहयोगी के खिलाफ है। सीरिया में भी वो अमेरिकी नीति के विरोध में चलता है।
अमेरिकन पॉलिसी को उस क्षेत्र में उसके खिलाफ है, खुल के उसकी कोशिश इस बात की है कि वो इजरायली मिलिट्री सुपीरियरिटी को भी वो चैलेंज कर रहा है।
ट्रंप प्रशासन के अधिकारी दावा कर रहे हैं कि प्रतिबंधों की ताजा खेप के बाद ईरान के लोग सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं। हकीकत यह है कि ईरान के कट्टरपंथी भी इन प्रतिबंधों को सरकार बदलने के मौके के तौर पर देख रहे हैं। लेकिन विश्लेषकों की राय में सर्वोच्च नेता आयतुल्ला खामनेई मौजूदा वक्त को सरकार बदलने के लिए ठीक नहीं मान रहे हैं। कमर आगा दावा करते हैं कि ईरान के अंदर राष्ट्रवाद गहरे तक जड़े जमाए हुए है।
ईरान की रिजीम अभी तक तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, अपोजिशन कोई लीडर नहीं है बड़ा, बिल्कुल रिजेंटमेंट है और काफी रिजेंटमेंट है। उनको लगता है कि इससे पहले जो कई डिमोन्स्ट्रेशंस हुए थे उस समय उनको लगता था कि ईरान के पास फॉरेन एक्सचेंज आई, बाहर से पैसा, ट्रेड, तेल के रुके हुए पेमेंट मिले, लेकिन उसका असर उनको दिख नहीं रहा था, तो उसका फायदा वहां पे कंजर्वेटिव एलिमेंट्स को मिला है पहले।
कमर आगा ये भी दावा करते हैं कि असंतोष इतना ज्यादा नहीं है कि फिलहाल सरकार बदल जाए। हालांकि हकीकत ये भी है कि हसन रूहानी के लिए सरकार चलाना आसान नहीं है। ईरान ने पाबंदियों का सामना पहले भी किया है, लेकिन इस बार के प्रतिबंध सबसे कड़े हैं। भारत और चीन फिलहाल ईरान के साथ संबंधों की डोर तोड़ने को तैयार नहीं, लेकिन उनके लिए अमरीकी दबाव को पूरी तरह दरकिनार करना भी आसान नहीं होगा। ऐसे में ईरान की मौजूदा सरकार ट्रंप प्रशासन के टशन से कैसे और कब तक टक्कर लेगी, इस पर पूरी दुनिया की नजर है।
दुनिया जहां प्रस्तुत कर रहे थे हमारे सहयोगी वात्सल्य राय, कैसा लगा हमें जरूर लिखें। अब समय हो चला है खेल समाचारों का।
खेल समाचारों के साथ मैं हूं ज्योतिका सिंह और शुरुआत करना चाहूंगी क्रिकेट से। आईसीसी महिला वर्ल्ड टी20 2018 प्रतियोगिता की शुरुआत 9 नवंबर यानी कल से होगी। 25 नवंबर तक चलने वाले इस टूर्नामेंट का आयोजन मौजूदा चैंपियन वेस्ट इंडीज में किया जा रहा है। टूर्नामेंट का पहला मैच भारत और न्यूजीलैंड के बीच कल खेला जाएगा। यहां भारत सहित कुल 10 देशों की महिला टीम हिस्सा ले रही है, जिन्हें दो ग्रुपों में बांटा गया है, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए में साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश, वेस्ट इंडीज, इंग्लैंड और श्रीलंका है। वहीं दूसरी तरफ ग्रुप बी में भारत, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान है। और अब बात करते हैं फुटबॉल की। आई लीग में डेब्यू करने वाली रियल कश्मीर की टीम ने अपने पहले घरेलू मैच में मंगलवार को चर्चिल ब्रदर्स के साथ गोल रहित ड्रॉ खेला। खेल समाचारों में आज इतना ही।
वक्त हो चला है कार्यक्रम की समाप्ति का, लेकिन उससे पहले मुख्य समाचार एक बार फिर सुन लेते हैं दिलनवाज पाशा से।
अमेरिका के महाधिवक्ता जेफ सेशंस ने राष्ट्रपति ट्रंप के कहने पर अपना पद छोड़ दिया है। जेफ सेशंस ने बीते साल 2016 के राष्ट्रपति चुनावों में रूस के कथित दखल को लेकर चल रही विशेष अधिवक्ता रॉबर्ट म्यूलर की जांच से अपने आप को अलग कर लिया था। वो तब से ही राष्ट्रपति ट्रंप के निशाने पर थे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो अमेरिकी संसद के नए निर्वाचित निचले सदन यानी कांग्रेस में डेमोक्रेट पार्टी के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं। कैमरून में अगवा किए गए 78 स्कूली बच्चों में से कुछ को उत्तर पश्चिमी बामेंडा शहर में उनके अभिभावकों से मिलवाया गया है। अपहरण के दो दिन बाद इन छात्रों को एक चर्च के पास छोड़ दिया गया था। पाकिस्तान में ईशनिंदा के आरोपों से हाल ही में बरी हुई ईसाई महिला आसिया बीबी और उनके परिवार ने रावलपिंडी एयरबेस से उड़ान भरी है। आसिया बीबी के वकील सैफुल मलूक के मुताबिक उन्हें मुल्तान जेल से रिहा कर दिया गया है। बीबीसी समाचार।
नमस्कार, भारत में आज इतना ही। स्टूडियो का संचालन कर रहे थे दीपक जसरोटिया। शाम 7:30 बजे दिन भर में फिर मुलाकात होगी। तब तक खबरों के लिए जुड़े रहें हमारी मल्टीमीडिया वेबसाइट bbchindi.com के साथ। मोहम्मद शाहिद को सभी साथियों के साथ दें अनुमति। नमस्कार।